एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन आवाज सुनेंगे जो लगभग 2000 साल पहले रोम से उठी थी, लेकिन जिसकी गूंज आज भी मतलब हमारे जीवन की उथल पुथल में रास्ता दिखा सकती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रोमन दार्शनिक लूशियस एनेस सेनेका और उनके बेहद प्रभावशाली पत्रों के संग्रह लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक की, या कहें एक स्टोइक के पत्र। और ये सिर्फ दर्शन नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला सीखने का एक व्यावहारिक गाइड है कह सकते हैं।
और आज के दौर में इसकी जरूरत शायद पहले से भी ज्यादा है ना, जब चारों तरफ इतनी अनिश्चितता है, इतना तनाव है और हम अक्सर समझ नहीं पाते कि हमारा सही रोल, हमारी भूमिका क्या है, हमारा असली लक्ष्य या गोल क्या होना चाहिए।
एकदम सही कहा। सेनेका हमें यही सिखाते हैं कि बाहरी उथल पुथल के बीच भी अपने अंदर शांति और मजबूती कैसे बनाए रखें।
अच्छा,
कैसे उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में है, हमारी सोच, हमारे चुनाव, हमारा चरित्र, और कैसे इसी से एक सार्थक जीवन का निर्माण करें। ये बातें आज भी उतनी ही ताजी और जरूरी लगती हैं।
तो सबसे पहले थोड़ा ये जानते हैं कि ये सेनेका थे कौन, मतलब सिर्फ एक फिलोसोफर या कुछ और भी थे?
हाँ, लूशियस एनियस सेनेका, उनको सेनेका द यंगर भी कहते हैं, और वो पहली सदी के रोम में, आप समझें, बहुत बड़ी हस्ती थे।
असाधारण।
अच्छा जी, सिर्फ स्टोइक दार्शनिक ही नहीं, वो एक कामयाब राजनेता भी थे, मशहूर नाटककार, और मजे की बात, उस वक्त रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक।
अरे, ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ स्टोइक दर्शन जो सादगी सिखाता है, आत्मनियंत्रण, बाहरी चीजों से अनासक्ति, और दूसरी तरफ इतनी दौलत और सत्ता।
हाँ, और शायद यही उनके लेखन को इतना प्रामाणिक, इतना रियल बनाता है। वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने सत्ता का मोह, धन के खतरे, जीवन की अनिश्चितताएं, ये सब बहुत करीब से देखा था। और सबसे नाटकीय बात क्या है,
क्या
वे बदनाम सम्राट नीरो के गुरु और सलाहकार थे।
क्या बात कर रही हैं?
नीरो के,
सोचकर ये अजीब लगता है, मतलब एक स्टोइक दार्शनिक उस शासक को सलाह दे रहा था जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है।
बिल्कुल, और अंत भी देखिए कितना दुखद हुआ। नीरो ने ही उन्हें आत्महत्या का आदेश दिया, जिसे सेनेका ने उसी स्टोइक शांति के साथ स्वीकार किया जिसका वो उपदेश देते थे।
ओहो,
तो उनका दर्शन किताबी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो जीवन के कठोर अनुभवों से, असफलताओं से, नैतिक संघर्षों से निकला हुआ ज्ञान है। वो जानते थे कि सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारना कितना कितना मुश्किल होता है। खैर, अब आते हैं किताब पर, लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक। तो जैसा मैंने कहा, ये कोई पारंपरिक किताब नहीं है, इसमें कोई शुरू से अंत तक कहानी नहीं है।
अच्छा,
तो फिर क्या है?
ये असल में 124 निजी पत्रों का संग्रह है, लेटर्स,
जो सेनेका ने अपने दोस्त लुसिलियस जूनियर को लिखे थे।
ये मेंटरशिप जैसी हुई, जैसे कोई अनुभवी गाइड अपने दोस्त को जीवन के सफर पे रास्ता दिखा रहा हो।
पत्रों के जरिए?
हाँ
हाँ बिल्कुल, इसे आप आत्मा के लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल कह सकते हैं। सेनेका लुसिलियस को और उनके जरिए हम सबको स्टोइक जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं।
कैसे? शुरुआत कैसे होती है?
शुरुआत होती है रोजमर्रा की व्यवहारिक बातों से, बहुत प्रैक्टिकल, जैसे समय का सही उपयोग कैसे करें, सच्ची दोस्ती का क्या मतलब है, भीड़ की सोच से कैसे बचें।
मतलब पहले जमीन तैयार की,
हाँ
बुनियादी बातें समझाई।
बिल्कुल एकदम। फिर धीरे धीरे वो स्टोइक दर्शन के गहरे सिद्धांतों पर आते हैं,
जैसे कि
जैसे डर पर काबू पाना, खासकर मौत का डर, अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना, मुश्किलों के लिए मानसिक रूप से कैसे तैयार रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सद्गुण यानी वर्चू, उसी को जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई मानना।
और इन सब का मकसद क्या था? सिर्फ जानकारी देना या कुछ और?
नहीं नहीं सिर्फ जानकारी नहीं, मकसद है बदलाव लाना। सेनेका का लक्ष्य कोई बहस जीतना नहीं था, वो चाहते थे कि लुसिलियस और हम सब पाठक एक बेहतर, ज्यादा शांत, मजबूत और सार्थक जीवन जिएं। वो बार बार कहते हैं कि दर्शन पढ़ने की चीज नहीं है, जीने की चीज है, प्रैक्टिस करने की चीज है। यह हमें अपना सही रोल समझने में मदद करता है और जीवन का असली लक्ष्य यानी एक अच्छा, एक गुणी इंसान बनना पाने में मदद करता है।
चलिए, तो फिर इन पत्रों में जो मुख्य विचार हैं, जो संदेश हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे बुनियादी चीज से।
हाँ, और वो है समय का मूल्य। ये शायद सबसे प्रसिद्ध बात है उनकी। सेनेका अपने पहले ही पत्र में लिखते हैं
कि
ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि ये है कि हम इसका बहुत सा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। समय ही हमारी असली संपत्ति है और हम इसे सबसे ज्यादा लापरवाही से लुटाते हैं।
ये बात तो आज भी कितनी सच लगती है। हम अक्सर महसूस करते हैं ना कि जिंदगी बस भागे जा रही है, पर ये नहीं देखते कि हम अपना वक्त लगा कहाँ रहे हैं।
सही कहा।
शायद सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने में या उन चिंताओं में जिन पर हमारा कोई वशी नहीं। सेनेका कह रहे हैं अपने समय के मालिक बनो, उसे समझदारी से खर्च करो।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है जीवन का उद्देश्य। एक और जगह वो कहते हैं, बहुत मशहूर कोट है ये भी, कि यदि किसी को ये नहीं पता कि उसे किस बंदरगाह पर जाना है तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं होती।
वाह, मतलब
अगर हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता, अपनी मंजिल ही साफ नहीं है, अपना रोल ही स्पष्ट नहीं है, तो हम सही दिशा में कोशिश कैसे करेंगे? समय की बर्बादी का एक बड़ा कारण ये दिशाहीनता भी तो है।
बिल्कुल सही। और दिशा कहाँ से मिलेगी? सही ज्ञान से और सही संगत से शायद।
हाँ, सेनेका पढ़ने पर भी जोर देते हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी किताबें बस ऊपर ऊपर से पढ़ने से बेहतर है कि कुछ महान लेखकों को गहराई से पढ़ो, उन्हें आत्मसात करो।
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी।
एग्जैक्टली। और भीड़ से बचने की चेतावनी भी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समाज से कट जाओ, नहीं।
तो फिर
मतलब है भीड़ की तरह सोचना बंद करो, भेड़ चाल से बचो, दूसरों की देखा देखी काम करना, बिना सोचे समझे किसी भी मान्यता को अपना लेना। वो कहते हैं ये हमारी तर्क शक्ति को कमजोर करता है।
तो सच्ची तरक्की कहाँ मिलेगी?
वो कहते हैं सच्ची प्रगति मिलती है एकांत चिंतन में और सच्ची दोस्ती में।
सच्ची दोस्ती। सेनेका के लिए इसका क्या मतलब था? आज की दोस्ती से कुछ अलग?
काफी अलग। उनके लिए सच्चा दोस्त वो है जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे, जिसके साथ आप बिना किसी झिझक के अपने सबसे गहरे विचार, अपनी कमजोरियां साझा कर सकें। ये सिर्फ हैंगआउट करने या मजे करने का रिश्ता नहीं है।
अच्छा।
ये एक दूसरे के नैतिक विकास में साझेदारी है, एक कमिटमेंट है।
अच्छा, अब आते हैं उस मूल स्टोइक विचार पर जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है और शायद सबसे ज्यादा काम का भी। हमारा नियंत्रण किस पर है और किस पर नहीं?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये स्टोइक दर्शन की नींव है कह सकते हैं। सेनेका समझाते हैं कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं।
दो तरह की? कौन सी?
एक वो जो हमारे वश में है, हमारे नियंत्रण में है, और दूसरी वो जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है।
ठीक है, तो हमारे वश में क्या है?
हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे चुनाव, हमारे काम करने का इरादा, हमारे नैतिक मूल्य, हमारा चरित्र, ये सब हमारे हाथ में है।
और हमारे वश में क्या नहीं है?
बाहरी घटनाएं, मौसम कैसा रहेगा, अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी या नीचे, दूसरे लोग क्या करेंगे या क्या सोचेंगे, हमारी सेहत पूरी तरह से, हमारी प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी, वो भी 100% हमारे वश में नहीं है।
ये तो है।
अपना पूरा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है।
और जो नियंत्रण में नहीं है,
जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, उसे शांति और स्वीकार्यता से अपनाओ। उसके लिए लड़ो मत, परेशान मत हो, क्योंकि ज्यादातर दुख और तनाव इसी वजह से होता है। हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे वश में है ही नहीं।
ये सुनने में तो बहुत बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कोई जरूरी इंटरव्यू है, नतीजा तो हमारे वश में नहीं, पर चिंता तो होती है ना।
हाँ, मुश्किल है, इसीलिए तो अभ्यास की जरूरत है, रोज अभ्यास। और सेनेका इसके लिए एक तकनीक भी बताते हैं।
क्या तकनीक है?
उसे कहते हैं प्री मेडिटेशियो मैलोरम। इसका मतलब है मुश्किलों की, बुरी चीजों की पहले से कल्पना करना।
बुरी चीजों की कल्पना करना, इससे तो और चिंता नहीं बढ़ेगी, डर नहीं लगेगा।
नहीं, सेनेका का तर्क अलग है। वो कहते हैं इसके दो फायदे हैं। पहला, अगर वो बुरी चीज सच में हो जाती है, मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई बीमार पड़ गया, तो आपको एकदम से सदमा नहीं लगता। आप मानसिक रूप से उसके लिए कुछ हद तक तैयार होते हैं।
अच्छा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह।
हाँ, कुछ वैसा ही।
अच्छा।
और दूसरा फायदा, आपको एहसास होता है कि अभी इस वक्त आपके पास जो है वो कितना कीमती है। आपकी सेहत, आपके अपने, आपकी नौकरी, जो भी है, आप वर्तमान के लिए ज्यादा शुक्रगुजार, ज्यादा कृतज्ञ हो जाते हैं। ये एक तरह का मानसिक कवच बनाने जैसा है।
दिलचस्प है ये, और इसी से जुड़ा है डर का सामना करना, खासकर मौत के डर का। वो कहते हैं मेमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम्हें मरना है।
हाँ, पर ये उदास होने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि हमें याद रहे कि जीवन सीमित है, फाइनाइट है। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो, फालतू चीजों में, छोटी मोटी बातों में वक्त बर्बाद मत करो। मौत की सच्चाई हमें जीवन की प्राथमिकताएं तय करने में मदद करती है, क्या सच में जरूरी है, क्या नहीं।
सही बात।
और सेनेका ये भी कहते हैं कि हम अक्सर अपनी कल्पना में हकीकत से ज्यादा दुख उठाते हैं, चिंता कर करके। उनका एक और मशहूर कोट है, वो आवश्यकता से अधिक पीड़ित होता है जो आवश्यकता से पहले पीड़ित होता है।
वाह, ये तो चिंता पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब उस विचार पर आते हैं जो शायद समझने में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, सद्गुण ही एकमात्र अच्छाई है। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, ये स्टोइक नैतिकता का कह सकते हैं शिखर है। सेनेका कहते हैं कि स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, सुंदरता, ये सारी बाहरी चीजें नैतिक रूप से अच्छी या बुरी नहीं है, वे उदासीन है, इंडिफरेंट।
उदासीन मतलब उनका कोई महत्व नहीं, जैसे सेहत, सेहत तो जरूरी है।
नहीं नहीं, महत्व है, बिल्कुल है, व्यवहारिक महत्व है। ये चीजें जीवन को आसान या मुश्किल बना सकती हैं, पर सेनेका के अनुसार इनका नैतिक महत्व नहीं है। ये आपको इंट्रिंसिकली अच्छा या बुरा इंसान नहीं बनाती।
तो फिर सचमुच अच्छा क्या है?
एकमात्र चीज जो सचमुच अपने आप में अच्छी है वो है सद्गुण, वर्च्यू, यानी बुद्धिमत्ता, न्याय, साहस और आत्मनियंत्रण जैसे चारित्रिक गुण। और एकमात्र चीज जो सचमुच बुरी है वो है दुर्गुण, वाइस।
तो इसका मतलब हुआ कि सच्ची खुशी पैसे से या अच्छी सेहत से या शोहरत से नहीं आती, बल्कि एक गुणी चरित्र होने से आती है।
हाँ, सेनेका का यही मानना था कि एक गुणी व्यक्ति गरीबी में भी, बीमारी में भी, यहाँ तक कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आंतरिक शांति और संतोष पा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो अंदर से आती है।
ये तो बहुत ऊंचा आदर्श है।
हाँ है, शायद हम में से कोई भी इसे पूरी तरह हासिल न कर पाए, लेकिन ये हमें सही दिशा दिखाता है कि हमें बाहरी सफलताओं के पीछे पागलों की तरह भागने के बजाय अपने चरित्र को, अपने अंदर के गुणों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यही हमारा असली लक्ष्य, असली गोल होना चाहिए।
और इसी से जुड़ा उनका विचार है धन और विलासिता के बारे में। ये दिलचस्प है कि वो खुद इतने अमीर थे, फिर भी इसके खतरों से आगाह करते थे।
हाँ, वो कहते थे कि विलासिता, जरूरत से ज्यादा आराम, हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाता है।
कैसे?
ये हमारी इच्छाएं बढ़ाता जाता है, कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, और हमें हमेशा असंतुष्ट रखता है। वो कहते थे सच्ची दौलत इसमें नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि इसमें है कि हमें कितना कम चाहिए, संतुष्टि में।
उनका वो कथन बहुत मशहूर है ना?
हाँ, वो आदमी गरीब नहीं जिसके पास बहुत कम है, बल्कि वो है जो और अधिक की लालसा करता है।
ये तो आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए एक सीधी चुनौती है।
और अंत में एक बहुत गहरा और प्रेरणादायक विचार भी है उनके पत्रों में, हमारे भीतर दिव्यता का। सेनेका मानते थे कि हर इंसान के अंदर तर्क का, जिसे स्टोइक्स लोगोस कहते थे, या कह लें दिव्यता का एक अंश होता है, एक स्पार्क होता है।
अच्छा।
हाँ, और हमारा जीवन का परम उद्देश्य, हमारा सबसे ऊंचा रोल, यही है कि हम उसी आंतरिक तर्क और प्रकृति के नियमों के अनुसार जिएं, अपने अंदर की उस दिव्यता को पहचानें और उसके अनुरूप आचरण करें।
तो ये दर्शन सिर्फ मुश्किलों से निपटना या शांत रहना ही नहीं सिखाता, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक खोज भी है।
बिल्कुल, ये हमें सिर्फ बाहरी दुनिया से डील करना नहीं सिखाता, बल्कि हमारे अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है उसे जगाने और उसके अनुसार जीने का रास्ता दिखाता है। सेनेका आदर्श स्टोइक ऋषि की भी कल्पना करते हैं।
सेज यानी?
यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह तर्कसंगत है, पूरी तरह गुणी है और जीवन के उतार चढ़ाव से बिल्कुल अप्रभावित रहता है। ये शायद एक अप्राप्य आदर्श हो हम जैसे साधारण लोगों के लिए, पर यह हमें प्रेरणा देता है कि इंसान क्या बन सकता है, अपनी क्षमता का शिखर क्या है।
तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें तो कुछ मुख्य संदेश या की टेकअवेज क्या होंगे जिन्हें हम याद रख सकते हैं?
ना किला अपने अंदर बनाएं, यानी पहचानें कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। आपकी सोच, आपके कर्म आपके नियंत्रण में है, बाहरी घटनाएं नहीं। अपना ध्यान सिर्फ उसी पर लगाएं जिसे आप बदल सकते हैं, बाकी को शांति से स्वीकार करें।
ठीक है, तीसरा?
तीसरा, असली दौलत चरित्र में है, बाहरी चीजों में नहीं। सद्गुण ही सच्ची खुशी का एकमात्र भरोसेमंद स्रोत है। बाहरी सफलताएं, पैसा, शोहरत, ये सब आता जाता रहता है, लेकिन आपका चरित्र, आपका आंतरिक गुण, वो हमेशा आपके साथ रहता है।
चौथा पॉइंट।
चौथा, मुश्किलों से भागे नहीं, उनका सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। प्री मेडिटेशियो मेलोरम का अभ्यास करें। कठिनाइयां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
और पांचवा?
और पांचवा, अपनी सोच के मालिक बने, भीड़ के अनुयायी नहीं। बाहरी दिखावे, विलासिता और दूसरों की राय से अपनी कीमत ना आंकें। सच्ची आजादी अपने सिद्धांतों पर चलने में है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? कुछ व्यावहारिक तरीके, एकदम प्रैक्टिकल टिप्स।
हाँ बिल्कुल, सोचे जा सकते हैं। जैसे पहला, तनाव कम करने के लिए, जब भी आप परेशान हो या गुस्सा आए या चिंता हो,
हाँ,
तो एक पल रुके और खुद से पूछें, इस स्थिति में क्या मेरे वश में है और क्या नहीं।
अच्छा,
अपना ध्यान सिर्फ उस पर ले जाएं जो वश में है। जैसे ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, जैम खुलवाना आपके वश में नहीं, पर शांत रहना, कोई ऑडियो बुक सुनना या आगे की प्लानिंग करना, ये आपके वश में है।
सही। दूसरा?
दूसरा, फोकस बढ़ाने के लिए सेनेका की तरह अपने समय का एक छोटा सा ऑडिट करें। देखें कि आपका दिन कहाँ जा रहा है, क्या आप उन कामों पर समय लगा रहे हैं जो आपके असली लक्ष्य, आपके मूल्यों के लिए जरूरी है, या फालतू चीजों में वक्त जा रहा है।
फिर
गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखें, अपने जरूरी कामों के लिए समय ब्लॉक करें।
तीसरा तरीका?
तीसरा, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए, रोज सुबह बस 2 मिनट सोचें कि आज क्या चुनौतियां आ सकती हैं और आप शांति से उनका सामना कैसे करेंगे। ये वही प्री मेडिटेशन का छोटा रूप है, या कभी कभी जानबूझकर छोटी मोटी असुविधा सहें।
जैसे
ठंडे पानी से नहा लें, या एक दिन अपनी कोई पसंदीदा खाने की चीज छोड़ दें। इससे इच्छा शक्ति बढ़ती है, डर कम होता है। चौथा, रिश्ते बेहतर बनाने के लिए सेनेका की सलाह माने। सतही जान पहचान के पीछे भागने के बजाय गहरी सच्ची दोस्ती पर ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हो, जिनके साथ आप खुलकर बात कर सकें।
और पांचवा,
संतोष पाने के लिए रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें और याद रखें, खुशी ज्यादा पाने में नहीं, कम चाहने में है। अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं में फर्क करना सीखें।
तो इस पूरी बातचीत से, इस गहरी दुबकी से, आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे यादगार बात क्या रही? क्या चीज आपको सबसे ज्यादा छू गई?
मेरे लिए जो सबसे शक्तिशाली विचार है वो ये कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अच्छी या बुरी, हमारे पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में है, और यही हमारी असली ताकत है। सेनेका हमें दिखाते हैं कि स्टोइक बनना, पत्थर दिल बनना या भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि मुश्किलों के बीच भी इंसानियत, साहस और शांति बनाए रखना है। ये हमें अपना सर्वश्रेष्ठ रोल निभाने और सही लक्ष्य की ओर बढ़ने का हौसला देता है। ये बहुत एम्पावरिंग लगता है मुझे।
हाँ ये तो है, और मेरे लिए शायद सबसे अहम सीख ये है कि दर्शन कोई हवा हवाई अकादमिक विषय नहीं है, ये जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल टूल किट है। मन की शांति और खुशी कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, बस उसे हमें रोजाना अभ्यास से, छोटे छोटे कदमों से विकसित करना होता है। सेनेका के पत्र हमें वही अभ्यास सिखाते हैं, बहुत ही व्यावहारिक अंदाज में। चलते चलते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सेनेका ने भीड़ और बाहरी प्रभावों से बचने की सलाह दी थी ताकि हम अपनी सोच को स्वतंत्र रख सकें। पर आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां सोशल मीडिया और 2400 घंटे की खबरें हमें लगातार घिरे रहती हैं, क्या सच्ची आंतरिक शांति और स्वतंत्र सोच पाना संभव है? या हमें स्टोइक सिद्धांतों को इस नई डिजिटल सच्चाई के लिए शायद फिर से समझने, अडैप्ट करने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।